नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 19, अध्याय का नाम है जम्बूद्वीप का वर्णन और श्लोक संख्या है 8। मेरे पीछे बोलिए। सुरो सुरो वाप्यथ वानरो नरः सर्वात्मनः यः सुकृतज्ञमुत्तमम् भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं यौत्तरान् अनयन कोसलान् देवमिति। शब्दार्थ बोलिए। सुरः देवता, असुरः असुर वा अपि अथवा अथ अतः वा अथवा अनरः मनुष्य के अतिरिक्त पशु पक्षी इत्यादि नरः मनुष्य सर्व आत्मना सब प्रकार से हृदय से यह जो सुकृतज्ञम सरलता से आज्ञाकारी बनाया गया उत्तमम सर्वोत्कृष्ट भजेत पूजा करने चाहिए रामम श्री रामचंद्र को मनुज आकृतिम मनुष्य रूप में प्रकट होकर हरिम श्री भगवान को यह जो उत्तरान उत्तरी भारत के अनियत वापस ले गए कोसलान कोसल देश अयोध्या वासियों को देवम आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ लोक में इति इस प्रकार। तो श्लोक के अंत में जो शब्द इति आता है इसका अर्थ है कि यहाँ समाप्त हो गया इति, जहाँ इति हो गया तो मतलब समाप्त। तो हनुमान जी की जो स्तुति है यहाँ पर समाप्त हुई है। तो हनुमान जी की स्तुति श्लोक संख्या 4 से चल रही थी। एक सेकंड, श्लोक संख्या 4, श्लोक संख्या 4 से शुरू हुई थी। हनुमान जी स्तुति करते हैं किम पुरुष वर्ष में और वहाँ श्री राम जो है विराजमान है, श्री राम की स्तुति करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की जो स्तुति है इसमें जो अंतिम श्लोक है इसका अनुवाद यह है। अतः चाहे सुर हो या असुर, मनुष्य हो या मनुष्यतर प्राणी जैसे पशु या पक्षी, प्रत्येक को उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की पूजा करनी चाहिए जिस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान की पूजा के लिए किसी कठोर तप या साधना की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे अपने भक्त की तुच्छ सेवा को भी स्वीकार करने वाले हैं। इस प्रकार से वे तुष्ट हो जाते हैं और उनके तुष्ट होते ही भक्त सफल हो जाता है। निस्संदेह श्री रामचंद्र अयोध्या के समस्त भक्तों को वैकुंठ धाम वापस ले गए। तो इस श्लोक को समझेंगे तात्पर्य पढ़ने से पहले इसमें शब्द क्या है। पहला है सुरो, चाहे देवता हो। श्री राम की भक्ति करने के लिए सबको जो है समान अधिकार है, भजन करने के लिए, श्री राम का भजन करने के लिए चाहे कोई देवता हो अथवा असुर। तो कितना अंतर है, देवता असुर में तो बड़ा अंतर है, कहां देवता कहां असुर, बहुत अंतर है। लेकिन श्री राम का भजन करने में सबका बराबर अधिकार है। श्री राम का जो, श्री राम की जो उदारता है वो इतनी है कि चाहे देवता हो और चाहे असुर हो, समान रूप से अधिकार है। वा अपि अथ वानर हो, अथवा कोई वानर हो, यहां पर दो अर्थ हैं, वानर के दो अर्थ हैं। एक तो अर्थ है वानर कि कोई चाहे बंदर हो, और प्रभुपाद जो अर्थ निकाल रहे हैं वा अनर, वा अथवा अनर यानी मनुष्य के अलावा कुछ भी, कुछ भी हो, देवता हो, असुर हो, अथवा मनुष्य के अलावा कुछ भी हो सकता है, पशु पक्षी जितने भी हैं। तो बानर शब्द के दोनों अर्थ हैं। तो बानर हो अथवा नर हो, मनुष्य हो। सर्वात्मना यह सुकृतज्ञम उत्तमम, सर्वात्मना संपूर्ण हृदय से जो भजन करे। यहां पर हनुमान जी कह रहे हैं कि भजन करना चाहिए, संपूर्ण हृदय से भजन करना चाहिए। किसका? सुकृतज्ञम। सुकृतज्ञम का मतलब क्या है? सु माने बहुत श्रेष्ठ, और कृतज्ञम का मतलब है जो कृत माने किए हुए को जानते हैं, उसे कृतज्ञ बोलते हैं। किसी व्यक्ति को कृतज्ञ हम बोलते हैं कि हम आपके कृतज्ञ हैं, यानी आपने हमारे साथ कुछ किया तो इसका जो है मैं सोचता हूं कि आपने किया है, तो उसको कृतज्ञ बोलते हैं। तो कृतज्ञता एक गुण है और अकृतज्ञता एक दोष है, कि आप कुछ भी करें मैं आपका कृतज्ञ नहीं हूं, अकृतज्ञ नहीं जानते। तो श्री राम कैसे हैं? कृतज्ञ ही नहीं है, सुकृतज्ञ है। सुकृतज्ञ यानी थोड़ा भी अगर आप करते हैं उनके लिए तो वो बहुत मानते हैं, बहुत सोचते हैं किसने किया, तो उसको कहते हैं सुकृतज्ञम। सुकृतज्ञम इसके बाद उत्तमम। उत्तमम का मतलब क्या है? उत माने ऊपर, उत्तर माने और ऊपर, और उत्तम माने सबसे ऊपर, है ना। जैसे हाई, हायर, हाईएस्ट अंग्रेजी में होता है ना, हाई माने ऊपर, हायर माने और ऊपर, उच्चतर, और हाईएस्ट उच्चतम। तो इसी प्रकार से उच्चतम या उत्तम, उत उत्तर उच्चतम और उत्तर उत्तम, है ना। तो श्री राम जो है सबसे उत्तम है, सबसे ऊपर है, उच्चतम है। सुकृतज्ञम उत्तमम भजेत रामम मनुजा कृतिम हरिम, मनुष्य की आकृति में हरि है। श्री राम जो है मनुष्य की आकृति में कौन है? हरि है, माने भगवान है, लेकिन मनुष्य की आकृति में है, है? मनुष्य शरीर में जो है लीला करते हैं, मनुष्य की लीला करते हैं। मनुजा कृतिम हरिम या उत्तरान अनियत कोसलान दिवामिति, जिन्होंने अयोध्या वासियों को, सब अयोध्या वासियों को वैकुंठ दे दिया। जब गए श्री राम अपने धाम में गए तो जितने अयोध्या वासी उनके साथ आना चाहें आ सकते हैं, उन्होंने द्वार खोल दिया अपना, तो सब खाली कर दिया, पूरी अयोध्या को ही खाली कर दिया। कौन नहीं जाना चाहेगा श्री राम के साथ? तो 10,000 साल तक श्री राम ने अयोध्या में राज्य किया, और इतनी सुविधा थी कि जो मरना नहीं चाहे वो नहीं मरेगा। तो कौन मरना चाहेगा श्री राम के राज्य में? कौन मरना चाहेगा श्री राम का राज्य में? इतना सुख है, कौन मरना चाहेगा? तो कोई मरा नहीं। और जब राम गए तो जो है सब राम के साथ चले गए, तो उसी रूप में चले गए, शरीर भी नहीं छोड़ना पड़ा। तो ये जो है श्री राम की उदारता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की। भगवान श्री रामचंद्र अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु हैं कि वे किसी के द्वारा, चाहे मनुष्य हो या कुछ और, थोड़ी भी सेवा किए जाने पर सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान बहुत, मतलब श्री राम जो है विशेष रूप से बहुत उदार हैं, बड़े सरल हैं, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी सेवा में भी श्री राम सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये राम का गुण है। तो एक कथा मैंने पढ़ी तो नहीं थी शास्त्र में, लेकिन प्रभुपाद ने फिर भी उसको उद्धृत किया है और बड़ी प्रचलित भी है। एक गिलहरी की एक घटना है, कि जिस समय पुल बन रहा था, समुद्र के ऊपर पुल बन रहा था, तो वानर जो है अपनी पूरी शक्ति से कार्य कर रहे थे और बड़ी बड़ी शिलाएं ला रहे थे, पर्वत के बड़े बड़े शिखर ला रहे थे, और क्योंकि छोटा पुल थोड़ी बनना है, 100 योजन का बनना है, 100 योजन का मतलब 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर कितना होता है, आप सोचिए 1200 किलोमीटर यहाँ से कितना होगा, कितनी दूर है कलकत्ता, यहाँ से कलकत्ता तक सोचिए इतना बड़ा पुल बनना है, और चौड़ाई में भी कितना, 10 योजन चौड़ा, 10 योजन चौड़ा का मतलब 120 किलोमीटर चौड़ा, 120 किलोमीटर चौड़ा मतलब यहाँ से दिल्ली कितना कहें, यहाँ से दिल्ली तक का चौड़ा पुल, और कलकत्ता, यहाँ से कलकत्ता तक का लंबा पुल, और यहाँ से दिल्ली तक का चौड़ा पुल। अभी तो 120 किलोमीटर का यहाँ कोई पुल भी नहीं होगा, 120 किलोमीटर लंबा भी नहीं होगा, चौड़ाई की बात छोड़ो, इतना बड़ा पुल बनना था है? और जो बानर हैं वो पर्वत के आकार के बानर हैं, वो काम कर रहे थे, कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी काम कर सकता है, और 3 दिन में बनाना भी है, 3 दिन का जो है समय, 3 दिन के अंदर बनाना है। तो सोचिए कितना काम कर रहे थे। एक गिलहरी भी सेवा कर रही थी, तो गिलहरी क्या करती थी कि वो बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे, और गिलहरी जो है धूल में लौट जाती थी, और वहाँ आकर के पुल में आकर के धूल को झाड़ देती थी, अपने बाल, अपने बालों से धूल झाड़ देती थी। तो वो भी काम कर रही थी, तो वो भी पूरी सेवा कर रही थी अपनी पूरी शक्ति लगा के। तो जब हनुमान जी ने देखा उसको तो बड़े गुस्सा हुए कि चल हट जाए यहाँ से, पैर में जो है दब जाएगी तो मर जाएगी, है ना। तो श्री राम जो है मतलब हनुमान को जो है बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो कम है तुमसे, अपनी जितनी शक्ति है पूरी शक्ति से वो भी सेवा कर रही है, तुम भी अपनी पूरी शक्ति से सेवा कर रहे हो, तो मेरी दृष्टि में दोनों बराबर हैं। सोचिए, है ना। तो ऐसी दृष्टि जो है मतलब भगवान की है। भगवान ये नहीं देखते कि आप कितनी सेवा कर रहे हैं, भगवान ये देखते हैं कि आप अपनी शक्ति में कितना परसेंट अपनी शक्ति लगा रहे हैं। तो ये जो है मतलब श्री राम का भाव है। और गिलहरी को भी जो है उन्होंने हाथ से ऐसे सहलाया, तो गिलहरी में भी जो निशान बने हैं ना, जो तो भगवान की उंगलियों के निशान अभी दिखाई देते हैं। तो ऐसा जो है प्रभुपाद ने कहा। तो यहां पर प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि चाहे मनुष्य हो या कुछ और, गिलहरी मनुष्य थोड़ी है, तो वह अनर, अनर का मतलब है जो मनुष्य नहीं है। तो प्रभुपाद जो है विशेष रूप से वानर शब्द का जो अर्थ है वो वह अनर लगा रहे हैं कि मनुष्य के अलावा कोई भी हो, गिलहरी भी हो, है ना, कोई भी हो, छोटे छोटा जीव जंतु हो, तो उसकी भी सेवा जो है श्री राम जो है देखते हैं, समझते हैं, और उसका जो है ख्याल करते हैं कि ये सेवा किया है, तुमने सेवा की, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा ही लाभ श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने से होता है। श्री कृष्ण तथा श्री रामचंद्र ने कभी कभी क्षत्रियों की भांति असुरों का वध करके अपनी दया का प्रदर्शन किया। तो ये भी दया का प्रदर्शन है। और मनुज आकृतिम जो है श्री राम के लिए भी हम कहते हैं, और श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं, और श्री चैतन्य के लिए भी कहते हैं, मनुज आकृतिम यानी मनुष्य लीला। तो श्री राम भी मनुष्य लीला करते हैं, कृष्ण भी मनुष्य लीला करते हैं, चैतन्य भी मनुष्य लीला करते हैं, लेकिन जो दूसरे अवतार हैं वो मनुष्य लीला नहीं करते हैं, जैसे वामन देव हैं, है ना। तो वामन देव ने जो लीला की तो वो ऋषि के पुत्र हैं, वामन कश्यप मुनि के पुत्र हैं। तो और जैसे मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, वराह अवतार, तो ये मनुष्य आकृति नहीं है, मनुष्य आकृति में नहीं है। मनुष्य आकृति में विशेष रूप से श्री चैतन्य है और श्री राम है, श्री कृष्ण है, मनुष्य आकृति में। और जब भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं तो मनुष्यों को बहुत उनका संग करने का अवसर मिलता है कि हमारी तरह है। तो भगवान चाहे कृष्ण के रूप में है, चाहे राम के रूप में, चाहे चैतन्य के रूप में है, तो भी जब मनुष्य लीला करते हैं तो मनुष्य में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि कोई ये ना सोचे कि नहीं नहीं अब मुझे इनसे दूर रहना है, ये तो बहुत बड़े हैं, इतने जो है मतलब निकट होते हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण भी जब हैं द्वारका में तो द्वारका वासियों को दर्शन देते हैं, तो ऐसे दर्शन देते जैसे पिता अपने पुत्र को दर्शन दे, बहुत स्नेह, बहुत स्नेह। कोई नहीं सोचता कि नहीं नहीं ये तो राजा हैं, राजा साहब से दूर रहना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। अभी आजकल तो जो है प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, वो हमेशा दूरी रखते हैं, कोई गोली ना मार दे उनको, तो सब हमेशा दूरी रखते हैं, बहुत उनके जो है रक्षक होते हैं। नहीं, जब श्री राम है, भगवान कृष्ण है, तो प्रजा के और उनके बीच में जो है कोई ये सब बाधा नहीं होती है, सब जो है मतलब अपने निकट देखते हैं कि मेरे जो है ये रक्षक हैं, मेरे राजा हैं, मेरे पिता हैं, मेरे संबंधी हैं, इस तरह से अपनापन रहता है। तो बहुत अपनापन है, श्री चैतन्य का भी अपनापन, बहुत अपनापन है अपने भक्तों के साथ, सामान्य लोगों के साथ। श्री कृष्ण का, श्री राम का, श्री चैतन्य का बहुत अपनापन है। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, ये तो जो है बहुत मतलब दूरी रखते हैं, क्योंकि वो विशेष उद्देश्य से उन्होंने अवतार लिया था, वराह अवतार ने कुछ विशेष उद्देश्य से लिया था। लेकिन ये अवतार तो ऐसे हैं जो मनुष्य के बीच में ही रहने वाले हैं, मनुष्य के साथ ही रहने वाले हैं, और मनुष्यों को जो है विशेष रूप से शिक्षा देने के लिए आते हैं कि मनुष्यों को कैसे कार्य करना है, कैसा आचरण करना है, और अपने चरित्र से एक आदर्श स्थापित करते हैं मनुष्यों के लिए कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए, और मनुष्यों को भी दिशा निर्देश देते हैं, उनको भी मार्गदर्शन देते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। कोई भी उनसे आकर के बात कर सकता है, तो सीधे बात कर सकता है। राम दरबार में एक कुत्ता भी आया है ना, एक कुत्ता है ना, तो श्री राम उसको भी बुलाते हैं, आओ अंदर आओ। अब कुत्ता सोचता है मुझे कैसे बुला रहे हैं, यहाँ तो जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है मतलब जैसे जज होते हैं, तो कितने वकील होते हैं, किन के माध्यम से फिर जो है कार्यवाही होती है, किसको पैसा देना पड़ता है, तब कहीं वो कुछ सुनवाई होगी, नहीं तो सीधे कोई सुनवाई नहीं होगी। वहाँ तो श्री राम सीधे सुनवाई करते हैं, कोई बीच में वकील नहीं है, कोई कुछ वो नहीं है, लिखा पढ़ी का काम नहीं है, सीधे आओ अपनी बात बताओ और सीधे अपना निर्णय फाइनल, हाथ के हाथ सब। कोई केस चलता नहीं है कि मतलब 10 साल से केस चल रहा है, 20 साल से केस चल रहा है, कुछ नहीं है। तो श्री राम तो कितना सोचिए, भगवान निकट है, कितने निकट है, एक कुत्ते को ही बुला रहे हैं, तो कुत्ते को कहते हैं कुत्ता कहता है कि मैं किसी को बोलूं वो श्री राम को बोलेगा, कैसे मतलब मैं आऊं। श्री राम कहते नहीं नहीं आओ, तुम खुद बोलो अपनी बात, बताओ तुम्हें क्या कष्ट है, बताओ। और तुरंत हाथ के हाथ सब फैसला कर दिया, साफ सुलझा लिया, कोई लिखा पढ़ी नहीं कि इधर फाइल जाएगी फिर उधर फाइल जाएगी, इस ऑफिस में फाइल नहीं होती, फिर 10 साल के बाद जब मुलजे मर जाता है तो फिर फैसला होता है कि ये उसको ये इनाम मिलना चाहिए, उसको ये दंड मिलना चाहिए। वो मर गया 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, तो आजकल का जो ये हाल है। और श्री राम के बिल्कुल सामने बुलाते हैं, और जो लोग नहीं आते हैं उनको कोई शिकायत है और नहीं आना चाहते हैं तो श्रीराम अपने जासूसों को भेजते हैं कि सुनो घरों में, कि घर में वो जो है अपनी बात बोलेंगे, अगर किसी से नहीं बोल पाते हैं, संकोच होता है बोलने में, तो उन्हें कोई कष्ट है, कोई शिकायत है, तो अपने घर में तो आपस में बात करेंगे, तो कानों से सुनो, कानों से सुनो। ऐसा कोई राजा हो सकता है? कोई सोच सकता है कि ऐसा भी राजा हो? यहां तो नेता लोग अगर आते हैं तो कोई जो है सुनवाई नहीं होगी कि कोई बताए अपनी परेशानी, बल्कि सब जब आते हैं तो सब नगर के स्वच्छ होना चाहिए, कोई शिकायत करने वाला ना होना चाहिए, सब खुश दिखाई दें, और नेता जी आएंगे अपना भाषण देके चले जाएंगे और आप फिर बाद में रोते रहो। जब तक वो आते हैं तब तक आप खुश रहोगे और बाद में आप रोते रहोगे, कोई सुनवाई नहीं। तो ये है, श्री राम स्वयं जा करके सुनना चाहते हैं कि जासूसों को भी संकोच अगर हो कि वो ना बताएं, किसी को कोई कष्ट है, कोई जासूस संकोच कर रहा है श्री राम को बताने में, तो श्री राम स्वयं नगर में जाते हैं वेश बदल करके जानने के लिए कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। तो ऐसे जो श्री राम है, तो यहां प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण तथा श्री राम ने कभी कभी क्षत्रियों की भांति असुरों का वध करके अपनी दया का प्रदर्शन किया। तो ये दया है, क्षत्रिय के रूप में श्री राम और श्री कृष्ण ये जो है मनुष्य हैं और क्षत्रिय के रूप में है ना, तो दया का प्रदर्शन किया कैसे, वध करके, असुरों का वध करके, पृथ्वी का भार उतारना, तो इसके लिए भगवान आते हैं। लेकिन फिर प्रभुपाल लिखते हैं किंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने असुरों तक को सहज ही भगवत प्रेम प्रदान किया। तो श्री चैतन्य क्षत्रिय के रूप में नहीं आए, राजा के रूप में नहीं आए, वे तो ब्राह्मण के रूप में आए, भक्ति के रूप में आए, तो उन्होंने जो है मारने का काम ना करके उनको जो है भक्त बनाया। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि चैतन्य ने अगर शस्त्र अस्त्र नहीं उठाए तो उनमें कोई कमी हो, ऐसा भी नहीं है। जो भट्ट थारी जो है कुछ लोग थे जो पाखंडी थे, नीच थे, और श्री चैतन्य के साथ कृष्णदास एक सेवक था, तो ये इन लोगों का जो दल है वो बड़ा दूषित था, वो स्त्रियों के साथ व्यभिचार करना और नशा करना ये सब काम करते थे, और श्री चैतन्य के साथ जो सेवक था कृष्णदास उसको भी बहला लिया, बहका करके अपने दल में कर लिया। जब श्री चैतन्य इनके पास आए कि भाई तुम लोग तो इतने आदमी हो और मेरे साथ एक आदमी था उसको भी आपने ले लिया, तो वो लोग जो है श्री चैतन्य को भी हथियार से मारने के लिए आए, तो श्री चैतन्य ने हथियार नहीं उठाया। लेकिन हुआ क्या था, पता क्या हुआ था, उनके हथियार उनके ही सिर में पड़ने लगे, उनके ही सिर फटे और भागे फिर। तो ऐसी बात नहीं है कि श्री चैतन्य दंड नहीं दे सकते हैं अगर उनके पास हथियार नहीं है, तो उनके ही हथियार जो श्री चैतन्य को मारने के लिए आए थे उनके सिर में पड़ने लगे और भागे, उनके ही सिर फटे, भागे सब, और कृष्णदास के जो है बालों को पकड़ करके श्री चैतन्य अपने साथ फिर ले गए, है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि श्री चैतन्य दंड नहीं दे सकते हैं, लेकिन चूंकि कलयुग पतितों का युग है, बहुत लोग पतित हैं, तो कहां तक भगवान मारेंगे, इसलिए श्री चैतन्य ने जो है बहुतों को भक्त बनाया जो बहुत पतित थे। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि सहजी भगवत प्रेम प्रदान किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। इसी चैतन्य का जो अवतार है वो क्या है, महावदान्य है ना, तो श्री रामचंद्र वदान्य है, श्री कृष्ण वदान्य है, श्री चैतन्य क्या है, महावदान्य, महावदार है, नमो महावदान्य है, कृष्ण प्रेम प्रदाय, कृष्ण प्रेम तक प्रदान करें, और कृष्ण प्रेम तो बहुत ऊंची चीज है, मुक्ति से भी बहुत ऊपर है। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण मार करके असुरों को मुक्ति देते हैं, लेकिन श्री चैतन्य तो उनको मारते नहीं है और मुक्ति से भी ऊपर क्या देते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान देते। कृष्ण प्रेम तो कोई सोच नहीं सकता है कि कृष्ण प्रेम क्या चीज है ना। कृष्ण अवतार में बहुत कुछ थोड़े से लोगों को कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ था, बहुत थोड़े लोगों को कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ था, श्री चैतन्य अवतार में कितने लोगों को कृष्ण प्रेम दिया, श्री चैतन्य ने महा अवदान है ना। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं आगे, श्री भगवान के समस्त अवतारों ने विशेषतः श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण तथा बाद में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूर्ववर्ती अनेक जीवात्माओं को मोक्ष प्रदान किया। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु को षड्भुज मूर्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जो श्री राम, श्री कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु इन तीनों का सम्मिलित रूप है। तो षड्भुज रूप जो है श्री चैतन्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को दिखाया था, है ना। तो षड्भुज रूप में दो भुजाएं उनकी जो है श्री राम की, तो एक भुजा में धनुष लिए, एक भुजा में बाण लिए, दो भुजाएं कृष्ण की, तो दोनों भुजाएं दो भुजाओं में बंसी लिए, एक ही चीज है दो भुजाओं में लिए हैं, तो कृष्ण के रूप में दो भुजाओं बंसी लिए, और दो भुजाएं चैतन्य महाप्रभु की सन्यासी के रूप में, तो एक में दंड लिए, एक में कमंड लिए। तो इस तरह से छह भुजाएं हैं, लेकिन पांच ही उनके पास वस्तुएं हैं, क्योंकि दो हाथों में तो बंसी है, तो दो हाथ मिला करके बंसी धारण कर दें। तो ये षड्भुज रूप है, तो प्रभुपाद इस रूप की जो है याद दिला रहे हैं कि षड्भुज मूर्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है चैतन्य महाप्रभु को। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य भगवान के इस षड्भुज रूप श्री रामचंद्र की दो भुजाएं, श्री कृष्ण की दो और श्री चैतन्य महाप्रभु की दो भुजाएं की आराधना से ही प्राप्त हो जाता है। तो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है ना। तो श्री चैतन्य ने जो है षड्भुज रूप दिखा करके ये संकेत दिया कि वही श्री राम है, वही श्री कृष्ण है। त्रेता युग में जो श्री राम थे वही ये हैं, और द्वापर युग में श्री कृष्ण थे वही हैं, कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु। तो तीनों का जो है सम्मिलित रूप है, और ये तीनों जो है ये क्या है, मनुष्य लीला करने वाले, इन तीनों ने मनुष्य लीला की है। तो अवतार जितने भी भगवान के, इनमें विशेष अवतार जो है तीन हैं जो मनुष्य लीला करते हैं, लेकिन श्री राम के लिए जो बताया जाता है मनुजाकृतिम, मनुज आकृति, इसमें कुछ विशेष बात है कि श्री राम मनुज आकृति में है। तो इसमें श्री राम ने मनुष्य लीला की जो है मतलब पूरा पूरा अभिनय किया है, पूरा अभिनय किया मनुष्य लीला का। इसका कारण क्या था, कई कारण हैं, उनमें एक कारण यह है कि रावण ने जब वर मांगा था ब्रह्मा जी से, तो उसने कहा था कि मैं किसी से ना मारा जाऊं, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ छूट देनी पड़ेगी। तो उसने कहा था कि मनुष्य और बंदर की सेवा और मैं किसी से ना मारा जाऊं। तो भगवान रावण का वध करने के लिए पूरी पूरी मनुष्य की लीला करते हैं। भगवान कृष्ण मनुष्य की लीला जरूर करते हैं, लेकिन कहीं आवश्यकता होती है तो अपना चतुर्भुज रूप भी प्रकट कर देते हैं। तो कई भक्तों ने उनका चतुर्भुज रूप का दर्शन किया, चतुर्भुज रूप प्रकट कर देते हैं, और गरुड़ को भी बुलाते हैं तो गरुड़ के ऊपर भी चलते हैं, तो गरुड़ के ऊपर भी चलते हैं क्योंकि गरुड़ उनके वाहन है ना। और श्री चैतन्य भी जो है कभी आवश्यकता पड़ती है तो चक्र उन्होंने बुलाया, चक्र 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 आ गया, तो अपना ऐश्वर्य जो है श्री चैतन्य भी प्रदर्शित करते हैं, और कभी कभी बोलते भी हैं अपने ऐश्वर्य का जो है अपना रूप भी दिखाते हैं। लेकिन श्री राम ने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस समय इंद्रजीत ने सर्प जो है नागपाश से सबको बांध दिया, अर्जुन राम लक्ष्मण सब जो है नागपाश से बंध गए, तो भगवान है लेकिन मनुष्य लीला कर रहे हैं तो नागपाश से बंधे हुए हैं, नागपाश से बंधे हुए हैं। तो फिर क्या हुआ कि गरुड़ जी आए उनको नागपाश से छुड़ाने के लिए। तो जब गरुड़ जी आए नागपाश छुड़ाने के लिए, तो जैसे गरुड़ आए तो गरुड़ को देखकर के नाग सब भाग गए, गरुड़ जी को कुछ नहीं करना पड़ा, गरुड़ जी को देखकर के नाग सब भाग गए। और श्री राम चूंकि मनुष्य लीला कर रहे हैं तो गरुड़ जी को भी नमस्कार करते हैं कि कि आपने हमें बड़े संकट से छुड़ा दिया। तो गरुड़ जी जो है श्री राम से तो कहते हैं कि मैं आपका ही सेवक हूं, या अंदर शंका हो गई, अंदर अंदर शंका हो गई कि कैसे ये जो है मतलब मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, और इन्होंने तो ऐसी स्थिति बना दी थी कि अगर मैं ना आऊं तो ये जो है संकट से भी नहीं छूटेंगे, स्थिति बना दी थी। तो गरुड़ जी को बड़ा संदेह हो गया, है ना। तो ये जो है फिर घटना काफी लंबी है कि जो काक भुसुंड है उनसे फिर राम कथा सुनते हैं, उनका संदेह दूर होता है गरुड़ जी का। तो श्री राम को जो है विशेष रूप से मनुजाकृति में हरिम कहा गया है, मनुष्य की आकृति में, है ना। तो इसलिए समुद्र पार करना है, समुद्र पार करना है, है ना। तो कैसे किया जाए, है सबके साथ में विचार कर रहे हैं कि समुद्र को कैसे पार करना। तो भगवान के लिए क्या कष्ट है, क्या परिश्रम है समुद्र पार करने में, है ना। लेकिन समुद्र पार करने के लिए जब समुद्र को जो है उन्होंने पहले तो उपवास किया था 3 दिन तक कि समुद्र स्वयं आए और उपाय बताए कि समुद्र को कैसे पार करना। लेकिन समुद्र जब नहीं आया तो अपना अग्नि बाण चढ़ाया और समुद्र में जो खलबली मच गई, सब जीव जंतु जो है भयभीत हो गए। और समुद्र जब आया तो उसने हाथ जोड़े, है तो समुद्र ने फिर यही कहा कि आपकी इस मनुष्य लीला से हम सब जो है चूंकि जड़ हैं, जड़ हैं तो इसलिए मानते नहीं हैं आपको। जब तक आपका हम ऐश्वर्य ना देख पाए, आपकी शक्ति हम ना देखें, तब तक हम जो है आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। और फिर समुद्र ने कहा कि अब आप जो है अगर चाहें तो समुद्र के ऊपर वैसे ही पार कर जाएं, मेरे ऊपर चल करके जैसे जमीन समुद्र चाहे तो आप जमीन की तरह समुद्र के ऊपर भी चल सकते हैं। तो समुद्र ने कहा आप चाहें तो मेरी ऐसी भी इच्छा है कि आप वैसे ही पार कर जाएं जमीन की तरह, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी कीर्ति की स्थापना हो कि आगे चल करके लोग देखेंगे भी कि आपका कुछ पराक्रम हुआ है। तो आप समुद्र में एक पुल बनाइए, और मेरी इच्छा है तो समुद्र में जो पत्थर हैं वो भी तैरेंगे। तो समुद्र ने कहा कि मेरी इच्छा तो समुद्र में पत्थर तैरेंगे, आप जो है पत्थर का पुल बनाइए, और ये जो है चूंकि बना रहेगा तो लोग आगे चल करके भी देखेंगे श्री राम ने ऐसा कार्य किया जैसा कोई नहीं कर सकता। तो श्री राम समुद्र के जो है सहायता से समुद्र को पार करते हैं, समुद्र की सहायता से समुद्र में पुल बनाते हैं कि बिना खंभे के पत्थरों का जो है इतना बड़ा पुल बना, है ना। तो श्री राम जो है इस तरह से मनुष्य लीला करते हैं। तो मनुष्य लीला इसीलिए की श्री राम ने क्योंकि रावण ने वर मांगा था कि मनुष्य के अलावा किसी से ना मारा जाऊं। तो अगर वे भगवान का जो है अपना ऐश्वर्य दिखाएं तो फिर ब्रह्मा जी का वरदान झूठा हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसको वर दिया था कि मनुष्य और वानरों के सिवा और किसी के हाथों तुम नहीं मारे जाओगे। तो भगवान को फिर पूरी तरह से मनुष्य बनना पड़ा, तो इसलिए भी जो है भगवान के जो जो चिन्ह है वो नहीं धारण करते। श्री राम ने जो है कभी चक्र हाथ में नहीं लिया, है श्री राम ने अपनी 4 भुजाएं नहीं दिखाएं, श्री राम गरुड़ के ऊपर नहीं चढ़ते। और ये रावण जो है पिछले जन्म का कौन है, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ने कितनी तपस्या की थी, है और ब्रह्मा जी से वर मांगा था, और ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि आपके सृष्टि में कोई भी जीव मुझे ना मार सके। तो फिर भगवान ने जो है कैसा रूप धारण किया था, नरसिंह का रूप धारण किया कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में जैसा कोई जीव हुआ ही नहीं आज तक ना होगा, ऐसा रूप धारण किया था, है ना। और जब ब्रह्मा जी सब देवता लोग भगवान नरसिंह देव को प्रसन्न कर रहे थे तो नरसिंह देव ने ब्रह्मा जी से यही कहा था आगे से ऐसा वरदान किसी असुर को नहीं देना, आगे से ऐसा वरदान किसी असुर को नहीं देना। तो अब अगली बार जो है फिर जब हिरण्यकशिपु रावण के रूप में आए, फिर तपस्या की, फिर वर मांगा, तो ब्रह्मा जी सचेत हो गए थे कि अब ऐसा वरदान नहीं देना है, ऐसा वरदान नहीं देना है, तो सचेत हो गए थे। हिरण्यकशिपु नहीं कह सकता कि पिछली बार आपने वरदान दिया था वो वरदान जो है अब मेरे ऊपर लागू होना चाहिए, मुझे क्यों तपस्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब शरीर छूट जाता है तो देवताओं के दिए वरदान सब नष्ट हो जाते हैं। अंतवत्तु फलम ते साम तद भवति अल्पमेध साम। देवताओं के द्वारा जो प्राप्त वरदान है अंतमान होते हैं। हिरण्यकशिपु नहीं कह सकता अगले जन्म में कि मैं पिछले जन्म का हिरण्यकशिपु, क्योंकि स्मृति ही नहीं रहती तो वो कैसे दावा करे ना? तो इसलिए शरीर छूटने के बाद जो भी वरदान मिला था वो सब खत्म। अब दोबारा से फिर गिनती शुरू करो है ना। तो दोबारा फिर उसने जो तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने जो है ये वरदान दिया था। तो भगवान श्री राम का जो राज्य है वो बहुत प्रसिद्ध है, बड़ा प्रसिद्ध है श्री राम का राज्य। उसकी चर्चा जो है आज भी होती है, राम राज्य की चर्चा। तो श्री राम के राज्य में इतनी सुविधा थी कि हर कोई जो है राम राज्य चाहता है ना। आप सोचिए, राम के राज्य में कोई मरना नहीं चाहे तो कोई मरेगा ही नहीं, कोई पानी में नहीं डूबेगा। आप पानी में चाहे जितना तैरो आप डूबोगे ही नहीं। आग का भी चाहे जितना काम करो आग में जलेगी नहीं, आग में नहीं जलेंगे है? तो अग्नि की दुर्घटना नहीं होगी, पानी की दुर्घटना नहीं होगी है? कोई दुर्घटना नहीं, किसी प्रकार की दुर्घटना, अभी तो दुर्घटना ही दुर्घटनाएं हो रही है, कोई दुर्घटना नहीं है ना श्री राम के राज्य में। कोई रोग नहीं, आधी व्याधि नहीं है ना। तो ये बहुत सुविधा थी। लेकिन जैसे गांधी जी ने राम राज्य लाना चाहा कि राम राज्य हम लाना चाहते हैं, तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि राम राज्य लाना चाहते हैं, जो बाहर खड़े अंदर आ जाएं, आप लोग और आगे आ जाइए ताकि बाहर के लोगों को जो है जगह मिल जाए बैठने के लिए, जो आगे वाले और आगे आ जाए ताकि। तो मैं क्या बता रहा था है? गांधी जी, हाँ। तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि राम राज्य तो आप लाना चाहते हैं लेकिन राम को नहीं चाहते, राम के जो आदेश हैं उनका आप पालन नहीं करना चाहते है? राम के आदेशों का पालन आप नहीं करना चाहते हैं और आप राम राज्य लाना चाहते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से है कि सूर्य के बिना आप सूर्य का प्रकाश लाना चाहते हैं, है ना। तो राम राज्य अगर लाना है तो क्या है कि आप राम के जो संदेश हैं उनका प्रचार करिए, और इस समय वही राम श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनका संदेश है, है? तो श्री चैतन्य का संदेश, तो प्रभुपाद ने क्या किया, श्री चैतन्य के संदेश का प्रचार किया। तो वो जो है मतलब एक विधि है, राम राज्य लाने की विधि यही है। कितनी जो है कमियां हैं, कितनी प्रकार की जो है आवश्यकताएं हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, लोगों की प्रकृति आवश्यकताएं पूरी नहीं कर रही है, कई प्रकार के अभावग्रस्त है जनता है? लेकिन अगर आप जो है श्री चैतन्य के आदेश के अनुसार कीर्तन करते हैं और जो है कीर्तन का प्रचार करते हैं, हर जगह कीर्तन हो तो वर्षा की कोई कमी नहीं होगी, वर्षा ज़्यादा भी नहीं होगी कम भी नहीं होगी, जितनी आवश्यकता होगी उस समय वर्षा होगी, हाँ, किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा। और प्रभुपाद ने ऐसा करके भी दिखाया, जहाँ जो है श्री चैतन्य का आंदोलन गया वहाँ लोग जो है सुखी हुए, उनकी आवश्यकताएँ पूरी हुई। तो ये सब जो है प्रभुपाद का जो है ये कार्य है। तो ये नहीं है कि हम राम राज्य तो चाहते हैं लेकिन राम को नहीं चाहते, तो ये संभव नहीं है। अब कुछ कार्तिक के महात्म्य में मैं कुछ आपको घटना सुनाऊंगा, इतना समय तो नहीं है, बहुत थोड़ा समय है। तो पद्म पुराण में महाराज पृथु को नारद जी सुना रहे हैं और कहते हैं कि हे पृथु महाराज, भगवान की पूजा किसी भाव से की जाए सदा फलदायी होती है। यदि कोई मनोविनोद में भी भगवान का भजन करता है तो परम पद की प्राप्ति होती है। मनोविनोद में कोई पूजा मान लो देख रहा है कि ऐसे पूजा कर रहे, तो वो बच्चे भी जो है ऐसी कभी नकल करते हैं तो वो भी जो है मतलब एक बड़ी मतलब उपलब्धि है। कोई नकल भी करे है ना, भगवान की पूजा की नकल भी करे तो भी है? फिर श्रद्धायुक्त होकर भजन करने वालों की गति क्या कहूँ, इसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में तुम्हें अति प्राचीन एक इतिहास सुनाता हूँ। तो आज मैं वृंदावन आया हूँ, तो वृंदावन कार्तिक में वृंदावन आने का जो महात्म है वही जो है ये कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। नारद जी ने कहा, कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नामक एक राजा राज्य करता था। बड़ा धर्मात्मा और प्रजा का संतान की भांति पालन करने वाला था। उसका धूम्रकेश नामक एक पुत्र था। हे राजन, राजा सुबाहु जितना धर्माचारी था उसका पुत्र उतना ही दुष्ट और दुराचारी था। राजा का नाम क्या था? सुबाहु। और पुत्र का नाम क्या था? धूम्रकेश। राजा था सदाचारी और उनका पुत्र धूम्रकेश उतना ही दुराचारी। वो परस्त्रीगामी, चोर, जुआरी, मदिरा पान करने वाला था। राजा ने उसे बहुत समझाया जिससे वो सुपथ पर चले, परंतु वो नहीं माना। तब राजा ने उसे ताड़नाएं दी, परंतु वो किसी प्रकार ना माना। एक दिन तो उसने शिष्टाचार की सभी सीमाएं लांघते हुए राजा की छोटी रानी अर्थात अपनी माता पर ही कुर्दृष्टि डाली। जब राजा को पता चला कि उसका पुत्र इतना कामांध हो गया है तो अपने रिश्तों की मर्यादा को भी भंग करने पर तुला है, तो क्रोधित होकर उसने उसे देश निकाला, दे दिया। अब राजकुमार मनों में रहता था और जो खाए नलायक हो, खाने लायक ना हो, सब खाता था, मदिरा पीता था, चोरी करके जो धन प्राप्त करता था वेश्याओं पर खर्चा करता था। इसी प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। राजकुमार एक वन से दूसरे वन, दूसरे से तीसरे, इस प्रकार भटकते भटकते कहां पहुंचा? वृंदावन। अब बहुत दुष्ट, बहुत पापी और कैसे गलती से आ गया वृंदावन। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता था, केवल कंदमूल खाता था। क्या नाम था उनका? सत्यव्रत। वृंदावन में रहते थे। वे भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूबते मुझ दीन की रक्षा कीजिए, राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार कहते कहते प्रेममग्न होकर वो कभी रोने लगते थे, कभी हर्षित होकर नाचने लगते थे, कभी गाने लगते थे। नित्य प्रति उनका ये व्यवहार था। ये कार्तिक का जो है, कार्तिक का महीना, और एक व्यक्ति गलती से कार्तिक महीने में आ गया और वृंदावन में आ गया, ये दोनों जो है मतलब बड़ी उपलब्धि है। वृंदावन में आना और फिर वो भी कार्तिक के महीने में आना, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो गलती से आ गया था और था क्या महापापी था। देव योग से एक दिन धूम्रकेश ने उस परम भक्त की ये क्रियाएं देखी तो उसको नया लगा, कि ये जो है कुछ अच्छा लग रहा है। उसने देखा कि कुछ अच्छा लग रहा है, तो वो वेश्या के घर में रहता ही था, तो मिट्टी की एक मूर्ति बनाई, उसी तरह से भगवान की राधा कृष्ण की मूर्ति बनाई और वैसी प्रार्थना करने लगा, वैसी क्रियाएं करने लगा। वो तो नकल कर रहा था कि अच्छा लगा है तो चलो नकल करो, और नाचा खूब और गाया भी और सो गया। और देव योग से तभी राजा के दूत वहां आ गए और उनके हाथों धूम्रकेश मारा गया। अब मर गया, तो मरने के पहले उसने क्या किया था, उसकी बहुत बड़ी जो है ये बहुत बड़ा परिणाम है। क्या हुआ? यमदूत आए, उसे महापापी जानकर घसीटते मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसे देखते यमराज सिंहासन से उठे, उन्होंने उसे पाद दिया, अर्घ्य प्रदान किया और अपने दूतों को फटकारा। इसको क्यों लाए? यमराज डांटते हैं अपने दूतों को, अरे इनको क्यों लाए, इनका तो आदर सत्कार करना चाहिए, तुम क्या करते हो इनके साथ में? हमारी आज्ञा के बाद भी तुम विष्णु भक्त को यहां लेकर क्यों आए? चाहे किसी भी भाव से क्यों ना किया हो, मृत्यु के पूर्व इसने कार्तिक मास में और वो भी वृंदावन धाम में क्या किया? भगवान का पूजन किया है। तो ये विशेष योग बन गया है मरने के पहले, मतलब वो मर गया, इसका जो है बहुत बड़ा लाभ हुआ कि उस समय उसकी मृत्यु हुई, है ना। तो क्या है, ये वैकुंठ का अधिकारी है। यमराज कहते हैं तो वैकुंठ के अधिकारी है। तत्पश्चात यमराज धूम्रकेश के सामने बोले, हे धूम्रकेश, भगवान की कृपा अपार है, उनकी भक्ति नौ प्रकार से की जाती है, किसी एक भक्ति का सहारा लेकर पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है। जिस प्रकार कथा श्रवण से राजा परीक्षित तरे, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, सत्संग से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, दान से राजा बलि, हाँ, सब परम पद को प्राप्त हुए। उस प्रकार तुम्हें भी चाहे जिस भाव से भी भगवान की पूजा की, तुम वैकुंठ के अधिकारी हो। अपने कर्मानुसार पहले तुम नरक के अधिकारी थे, अब तुम्हारा अधिकार नरक में जाने का नहीं रहा। किंतु कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जाती। जहां पर भगवान की पूजा होती है, तो इस तरह से ये जो है मतलब आश्चर्य की घटना है कि, लेकिन अगर अपराध ना हो, यहां पर जो मुख्य बात है वो पापी से पापी भी जो है भगवान की भक्ति से जो है पूरा लाभ उठा लेता है, लेकिन अपराध ना हो। और जब हम अपराध करते हैं तो फिर वो जो है हमारी पूजा या हमारा जो नाम जप है तो उसका फिर क्या होता है कि प्रभाव नहीं होता मेरा। तो गलती से कुछ नाम भी ले लेता है तो उसका जो उद्धार हो सकता है, लेकिन हम जो है जान करके और नाम का जो है अपराध करते हैं तो फिर वो जो है उससे बाधा पड़ती है, है ना। तो ये जो है आज का संदेश है। और इस श्लोक में जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ये विष्णुप्रिया देवी ने लिखा है। देव असुर वानर या मनुज है, सबका कर्तव्य यही, सब प्रकार से करे भजन भगवान प्रभु श्री राम का ही। नर रूप में आप प्रभु नारायण हैं प्रकट हुए, थोड़े किए को भी प्रभु बहुत हैं करके मानती। शरणागत वत्सल हैं प्रभु, जब दिव्य धाम को पधारे थे, सब उत्तर कोसल वासियों को भी अपने साथ थे ले गए। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की। तो अभी हमारे पास थोड़ा समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? हाँ जी, कृष्ण कुमार बोलिए, माइक नहीं, हैंड माइक नहीं है, अच्छा जोर से बोलिए। हाँ, श्री राम की लीला कितने टाइम में होती है? तो कहीं पर तो ये बताया गया कि हर त्रेता युग में होता है, लेकिन वो जो बताया गया कि हर त्रेता युग में राम की लीला होती है तो वो कोई उतना प्रामाणिक नहीं है। लेकिन भविष्य पुराण में ये बताया गया है कि श्री राम की लीला हुई थी 24वीं त्रेता में श्री राम की लीला हुई। तो इसे समझ आता है कि श्री राम का भी अवतार ब्रह्मा जी के एक ही दिन में होता है। तो भगवान कृष्ण हमेशा 28वें मन्वंतर के 28वें द्वापर में होते हैं, तो श्री राम 7वें मन्वंतर के 24वीं त्रेता में होते हैं। तो ऐसा लगता है कि श्री राम का भी अवतार जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही होता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है, कोई समीक्षा? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय।